दंडोत बंदन अनकवार सर्व कला समरथ डोलन ते राखह प्रभु नानक दे करहत ज्ञान ध्यान किछ कर्म न जाना सार न जाना तेरी सब ते वड़ा सतगुर नानक जिन कल राखी मेरी बेसुमार अथाह अगनत अतोले ज्यों बुलावो त्यों नानक दास बोले। दसों पातशाहियों के ज्योत स्वरूप साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज के चरणों में उपस्थित गुरु की साजी निवाजी सात संगत जी गज के आखो वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह। अभी अभी आप बहुत ही सुंदर गुरु की महिमा गुरु का कीर्तन सुन रहे थे। तेरे चोज बिटाना मेरे साहेबा तेरे चोज बिटाना हे सच्चे पातशाह हे वाहिगुरु तेरी महिमा तेरा सिफत सलाह जितना भी व्यक्ति करे वो कम है। यह जो सारा संसार जो तुमको दिख रहा है ये प्रभु का खेल है प्रभु की रचना है ये प्रभु का कौतक है ये प्रभु की लीला है। जल तरंग अरफेन बुध बुधा जलते भिन्न न होई एह परपंच पार ब्रह्म की लीला विचरत आन न होई। विचार करके देखो तो कुछ भी नहीं है सब वाहिगुरु की लीला है। तेरे चोज बिठाना हे वाहिगुरु जहां पर जल है वहां पर तू पहाड़ बना देता है जहां पहाड़ है वहां तू नदियां बना देता है भीख मांगने वाले को राजा बना देता है राजा को तू भिखारी कर देता है। गूंगे से तू जो है गीता का पाठ करवा लेता है और कभी कभी बड़े बड़े पंडित को भी तुम्हारी महिमा का कुछ पता नहीं चलता। तेरे चोज भी डालो तेरा जो खेल है तेरी जो लीला है वो आश्चर्यजनक है। तेरी महिमा को हे सच्चे पातशाह आज तक किसी ने नहीं जाना है और ना कोई जान सकता है क्योंकि संसार अंत वाला है और तू बेअंत है तू सर्वज्ञ है जीव अल्पज्ञ है अल्पज्ञ सर्वज्ञ को कैसे जान सकता है। सात संगत जी साहेब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज की पावन पवित्र वाणी 52 अखरी जिसकी कथा आप लोग लड़ीवार सुन रहे हैं। साहेब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज हम लोगों को परमात्मा की महिमा वाहेगुरु का सिफत सलाह के बारे में समझा रहे हैं। श्लोक हथ कलम अगम मस्तक लिखावती उरज रहियो सब संग अनूप रूपावती उस्तत कहन न जाए मुखो तुहारिया मोहि देख दरस नानक बलहारिया। हथ कलम अगम मस्तक लिखावती। हे अगम, अगम का भाव है जिसको मन से नहीं जान सकते, वाणी से नहीं जान सकते। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मन सह सह, मन समेत जह जाए ना वाणी। जहां पर मन नहीं जा सकता, बुद्धि नहीं जा सकती, ऐसा जो बेअंत है वाहिगुरु परमात्मा सच्चा पातशाह, हथ कलम अगम मस्तक लिखावती, वो जो वाहिगुरु है अगम नारायण वाहिगुरु, उसके हाथ में कलम है जो के सबके मस्तक में लिख के भेजा है। यहां पर एक प्रश्न है कि परमात्मा ने जो सबके मस्तक पर जो लिख के भेजा है वो अपनी मर्जी से भेजा है या जीवों के कर्मों के अनुसार भेजा है। यहां पर एक बहुत डूंगा प्रश्न है। और लोग ये भी प्रश्न करते हैं, परसों ध्यान के क्लास में लोग पूछ रहे थे कि स्वामी जी जब करण करावन हार सब परमात्मा ही है, लेख ना मिटे हे सखी जो लिखिया करतार, मनुष्य के हाथ में कुछ भी नहीं है, एक पत्ता भी हिलता है तो प्रभु के हुक्म से हिलता है, हुक्म अंदर सब को बाहर हुक्म ना कोई, तो जो हम पाप करते हैं वही करवाता है, सब कुछ वही करवा रहा है। हम चोरी करें, डाका करें, बेईमानी करें, करवा तो वही रहा है, तो इसमें मेरा क्या दोष है? और एक बहुत अहम प्रश्न है, साथ संगत जी ये सच्चाई है कि हुक्म अंदर सबको बाहर हुक्म ना कोई, सब कुछ उसके हुक्म से हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। शास्त्रों में महापुरुषों ने दो प्रकार की सृष्टि बताई है, दो प्रकार का संसार। एक तो वो संसार है जो ईश्वर ने बनाया है, ये जो सारा देख रहे हो पहाड़ नदियां सारा कुछ, और एक है जो जीव ने खुद संसार बनाया है। एक अनेक व्यापक पूरक जत देखो तत सोई, माया चित्र बचित्र भी मोहित बिरला बुझे कोई। ये सारा ब्रह्मांड परमात्मा का बनाया हुआ है, हमारा क्या बनाया हुआ सो देखो। ये मकान मेरा है, ये भाई मेरा है, ये बेगाना है, ये दो पुत्र हमारे हैं और ये सारे पराए हैं, ये घर हमारा है और ये सारे दूसरे के हैं, ये दो के लिए हम बहु परपंच कर परधन ल्यावे सुत दारास्यों आन लुटावे, और दूसरे के लिए मुंह में रोटी नहीं है तो वो भी देने को तैयार नहीं। जो हमारा बनाया हुआ संसार है, किसी को अपना किसी को पराया, यही मनुष्य को दुखी करता है। आप देखना, कभी कभी लोग सुनामी लहर हुआ लाख आदमी मर गया, कोई बात नहीं, ठीक है, ये तो रोज अखबार में आते रहता है, इतना कह करके आगे निकल गए। लेकिन उसमें आपका कोई बच्चा मर जाए, फिर देखो ये अखबार में आ जाए कि किसी का बच्चा मरा है, फिर देखो कितना चीखना कितना चिल्लाना। लाख मर गया कोई काम नहीं, एक मरा उसके। तो जो परमात्मा का बनाया हुआ संसार है वो किसी को दुखी नहीं करता, जो तुम्हारा बनाया हुआ संसार है वही तुमको दुखी करता, वही सुखी करता है। दूसरा, लोग ये प्रश्न करते हैं कि स्वामी जी जब सबके अंदर एक ही परमात्मा है और उसके हुक्म के बगैर कुछ नहीं होता, तो एक आदमी लोभी है, एक आदमी क्रोधी है और एक आदमी को ब्रह्म ज्ञान हो जाए तो सबको क्यों नहीं हो जाता, क्योंकि सबके अंदर एक ही आत्मा है। एक प्रश्न कितने प्रश्नों को खड़ा करता है। साथ संगत जी इसको बहुत ध्यान से सुनना कि जैसे करंट तो एक है लेकिन वो करंट पंखे से गुजरता है तो हवा देता है, वही करंट फ्रिज से क्रॉस करता है तो हमें ठंड वस्तुओं को ठंडा रखता है, वही करंट हीटर से क्रॉस करता है तो उसे हीट मिलता है, और वही करंट इस स्पीकर से निकल रहा है माइक से तो आवाज को फैला रहा है। करंट एक है लेकिन उस करंट के साथ अलग अलग इंस्ट्रूमेंट लगने से अलग अलग परिणाम होते हैं। इस संसार में जितने भी मनुष्य हैं सबके अंदर जो चेतना है, शक्ति, द एब्सोल्यूट ट्रुथ, परमात्मा, वो एक है, लेकिन किसी के मुख से हीटर जैसी गर्मी निकलते रहता है और किसी के मुंह से जो है फ्रिज जैसा ठंडा निकलते रहता है। दोनों का मन वखरा है, किसी के अंदर से ईर्ष्या द्वेष 24 घंटा निकलते रहता है, हमेशा टोका टाकी, ये सब सारी चीजें जो है निकलते रहता है और कोई अपना शांत रहता है। जो इंस्ट्रूमेंट है ना मन, वो सबके वखरे हैं, लेकिन मन को जो शक्ति देने वाला चेतन है, आत्मा, परमात्मा का स्वरूप, वो सबके अंदर समान है। यहां पर गुरु महाराज उपदेश कर रहे हैं, हथ कलम अगम मस्तक लिखावती। परमात्मा ने अपने हाथ में कलम रखा है और सबके मस्तक पर लिख दिया है, लिख ना मिटे हे सखी जो लिखिया करता है। जो परमात्मा ने लिख दिया उसको कोई मिटा नहीं सकता, लेकिन साथ संगत जी परमात्मा जो लिखा है वो अपनी मर्जी से नहीं लिखा है। यदि परमात्मा अपनी मर्जी से लिखे तो परमात्मा अन्यायी कहलाएगा, किसी को राज दे रहा है, किसी से भीख मंगा रहा है, तो अन्यायी नहीं हो गया? नहीं, परमात्मा अन्यायी हो नहीं सकता। परमात्मा तो सबको ऐसा न्याय करता है, ऐसा न्याय करने वाला इस ब्रह्मांड में दूसरा हुआ ही नहीं। परमात्मा हरेक के मस्तक में लेख लिखा है, उसके कर्मों के अनुसार लिखा है। जेहा विजय सोलुने कर्मा संदड़ा खेत, हरेक के कर्मों को देख करके परमात्मा ने उसके मस्तक पर लेख लिख दिया है। हथ कलम अगम मस्तक लिखावती,
उरज रहियो सब संग अनूप रूपावती। साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज उपदेश कर रहे हैं कि जो अनूप, जिसकी उपमा नहीं हो सकती, और रूपावती जो बहुत सुंदर है, सत्यम शिवम सुंदरम, जो अत्यंत मनमोहक है, तीनों लोकों की सुंदरता उसके सामने कुछ भी नहीं है, ऐसा जो वाहेगुरु सुंदर है और उपमा से रहित है, उरज रहियो सब संग, वो सब के अंदर जैसे कपड़े के अंदर ताना पेटा है ना, ऐसे ही सब के अंदर जो है वो समाया हुआ है। जैसे फूलों में खुशबू, लकड़ियों में आग, दूध में घी समाया है, ऐसे सब के अंदर परमात्मा समाया हुआ है, सब के अंदर, कोई खाली नहीं है। हथ कलम अगम मस्तक लिखावती, उरज रहियो सब संग अनूप रूपावती। उस्तत कहन ना जाए मुखह तुहारिया। हे वाहिगुरु, तू बेअंत है और बेअंत होने के कारण उस्तत कहन ना जाए, तुम्हारे एक बार पलक मारने से ये सारा ब्रह्मांड जो है वो पानी में डूब जाता है, सारा संसार खत्म हो जाता है, और एक क्षण के लिए आंख खोलने से ये नई सृष्टि बन जाती है। वाहेगुरु का चोज है, खेल है। आप कहीं भी जाओ, पहाड़ों में जाओ, नदियों के पास जाओ, जंगलों में जाओ, पंछियों को देखो, बदलों को देखो और आश्चर्य करो, वाहेगुरु वाह, तेरी छवि, तेरी सुंदरता, तेरी महिमा कितनी है कि एक छोटी सी पंछी है, आप देखना इतना तेज भागता है, फिर बैक हो जाता है, फिर जाता है, कैसी शक्ति वाहेगुरु ने दिया है। देखते रहो पंछियों को, जाते जाते एकदम घूम आता है, फिर जाता है, फिर आपस में बातें करता है, फिर इधर, मतलब है जो वाहेगुरु ने छोटी सी पंछी में, और उसके कोई क्रीम पाउडर नहीं लगाता, लेकिन फिर भी उसके पंख इतने सुंदर, पत्तों को देखो, आज ही सुबह आ रहा था, देखा पत्तों में इतना चमक, इतना रंग भरा वाहेगुरु ने, ये सब कुछ जो सुंदरता है, किसकी सुंदरता है, ये वाहेगुरु की सुंदरता है। समय जोत जोत है सोए, तिसदय चानन समय चानन होए। उस्तत कहन ना जाए मुखह तुहारिया। हे वाहेगुरु, एक मुंह से तुम्हारी महिमा, तुम्हारा सिफा सालाह कौन कर सकता है। शेष नाग ने परमात्मा से मांगा कि मेरे हजारों मुंह दे दो, हजारों कान दे दो, किस लिए। हे वाहेगुरु, मैं तेरा सिफा सलाह करूं, तेरा जस सुनूं, लेकिन फिर भी सारी दुनिया, देवता लोग, सारे पंछी, सब लोग उसके उस्तत को गा रहे हैं, लेकिन फिर भी उसकी महिमा को गाया नहीं जा सकता, क्योंकि वो अनंत है। उस्तत कहन ना जाए मुखह तुहारिया, मोहि देख दरस नानक बलहारिया। साहेब श्री गुरु अर्जन देव जी कह रहे हैं, हे नारायण, हे वाहिगुरु, हे सच्चे पातशाह, हम तेरे ऊपर कुर्बान जाते हैं, बलहार जाते हैं, मोहि देख दरस, हमको जो है एक तरफ, एक बार, एक भोरी नदर नाने, एक क्षण के लिए मुझे दरस दे दे, दर्शन दे दे, और एक क्षण का दर्शन जो है हमको सदा के लिए निहाल कर देगा। उसका जो दर्शन है ये तीनों लोकों की सुंदरता से भी ज्यादा सुंदरता है, ऐसा जो मनमोहक है वाहेगुरु परमात्मा,
मोहि देख दरस नानक बलहारिया।
हथ कलम अगम मस्तक लिखावते, उरज रहियो सब संग अनूप रूपावते, उस्तत कहन न जाए मुखव तुहारिया, मोहि देख दरस नानक बलहारिया। ब्रह्मे विष्णु महेश लख ध्याइंदे, ब्रह्मा विष्णु महेश करोड़ों ब्रह्मांड है, करोड़ों ब्रह्मा है, करोड़ों विष्णु है, एक थोड़े है, एक सृष्टि का एक ब्रह्मा है, एक विष्णु है, एक महेश है। ऐसे पाताला पाताल लख आघास आघास करोड़ा है। हरि अनंत हरि कथा अनंत, ये सब कुछ अनंत है। तो ब्रह्मे विष्ण महेश लख ध्याइंदे, लखा ब्रह्मा लखा विष्णु एक अकाल पुरुष को ध्यान करते हैं। नारद सारद शेष कीरत गाएंदे, नारद जी सारद शारदा और शेष नाग उसकी कीर्ति को जस को गाते हैं। गण गंधर्व गणेश नाद बजाएंदे, गण गंधर्व और गणेश जी जो हैं हमेशा नाद बजा करके वाहेगुरु की महिमा को गाते हैं। छे दर्शन करवेश सांग बनाएंदे, ये जो छे दर्शन है योग दर्शन और वेदांत दर्शन, न्याय दर्शन, सांख्य दर्शन और मीमांसा दर्शन, वैशेषिक दर्शन, ये छह दर्शन है। और छह दर्शन के छह जो है ऋषि हैं वेद व्यास जी, ये वेदांत दर्शन के करता है। गौतम न्याय दर्शन के करता है और कपिल सांख्य शास्त्र के करता है। जैमिनी पूर्व मीमांसा के करता है और इसी तरह से योग दर्शन जो है वो पातंजल मुनि का, ये छह शास्त्रों के छह ऋषि हैं। यहाँ पर गुरु महाराज उपदेश कर रहे हैं, छह दर्शन कर वेश सांग बनाएंदे, गुरु चेले उपदेश कर्म कमाएंदे, आद पुरुष आदेश पार ना पाएंदे। भाई गुरुदास जी का कोई भी आज तक उसकी महिमा को उसकी बेअंतता को आज तक कोई भी पार नहीं पाया है। सत्संग जी तू आपे आप वर्तदा, आप बणत बनाई, तुद बिन दूजा को नहीं, तू रहया समाई, तेरी गतमित तू है जानदा, तुद कीमत पाई, तू अलख अगोचर अगम है गुरमत दिखाई। ऐसा जो अलख है परमात्मा, जो लखा नहीं जाता, गुरमत दिखाई, गुरु की ऐसी महिमा है कि अलख को भी लखा देता है, उसको जना देता है, ये गुरु की महिमा है। केते कहें वखान कह कह जावना, वेद कहें वखियान अंत ना पावना, पढ़िए ना ही भेद बुझे पावना। पढ़ने से ज्यादा क्या है बुझना, बुझना का भाव यह है कि किसी संत महापुरुष के चरणों में बैठकर गुरबानी के रहस्य को बुझना है, उसके रहस्य को जानना है, समझना है, और समझ पड़ियो तो विसरियोगा। एक बार गुरु की अंडरस्टैंडिंग मेरी अंडरस्टैंडिंग हो जाए, गुरु की समझ हमारी समझ हो जाए तो फिर बेड़ा पार है। हमारी समझ कुछ और ही है, गुरु महाराज कुछ कहते हैं हम कुछ कहते हैं। सच्चाई तो है कि एवड ऊंचा होए कोई तिस ऊंचे को जाने सोए। जब तक हम साधना के द्वारा, कीर्तन के द्वारा, भजन के द्वारा, नाम जप के द्वारा और ब्रह्म ज्ञान के द्वारा उस परम अवस्था को नहीं प्राप्त कर लेते, तब तक कुर्बानी के रहस्य को पूरा पूरा समझ ही नहीं सकते, क्योंकि ये धुर की वाणी है। और इस धुर की वाणी के रहस्य को जानने के लिए आपको किसी साधु, किसी संत, किसी ब्रह्मज्ञानी के शरण में जाना ही पड़ेगा। साध संगत जी, एक समय की बात है जब साहेब श्री गुरु अमरदास जी महाराज लगभग 20-22 बार हरिद्वार गए तीर्थ यात्रा करने के लिए। पहले लोग जाते थे, पैदल जाते थे और सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु का सिमरन करते जाते थे। तो वो जो तीर्थ यात्रा होता था ना, वो साधना का एक अंग होता था, जीवन पवित्र होता था। बड़े बड़े साधु संत महापुरुष ब्रह्मज्ञानी का दर्शन होता था, उनके चरणों में बैठकर हमें उनके उपदेश सुनने का अवसर प्रदान होता था। लेकिन आज क्या है कि तीर्थ यात्रा नहीं, आज तो जितने भी तीर्थ स्थान हैं वो एक पिकनिक स्पॉट हो गया है। अभी स्टेशन भी नहीं पहुंचते और फोन करते हैं कि हाल चाल है घर का, हर एक का हाल पूछते। जब तो गुरु का ध्यान करके जा रहा है तो गुरु बल ध्यान कर। सारी जिंदगी घर में ध्यान करके देखा है, कुछ मिला नहीं है कलेश के अलावे। तो पहले के लोग जब हरिद्वार या श्री अमृतसर साहेब, श्री तरन तरन साहेब, श्री गोविंदवल साहेब, श्री पटना सब साहेब, हजूर साहेब लोग जाते थे तो गुरु का ध्यान करके गुरु गुरु जप जप जाते थे। तो उनको उनका मन भी शुद्ध होता था, गुरु महाराज दर्शन भी देते थे। एक समय साहेब श्री गुरु अमरदास जी महाराज एक सराय में बैठे हुए थे, जहाँ जाते थे सत्संग जी। उस स्थान का ये दास ने दर्शन किया है, वहाँ पर एक गुरुद्वारा बना हुआ है और निर्मले संतों के संत लोग उसको सेवा करते हैं। उस गुरुद्वारा गंगा नदी के किनारे ही है, जहाँ पर गुरु अमरदास जी महाराज लगभग 20-21 बार गए। वहाँ पर एक दुर्गादास पंडित था। गुरु महाराज गंगा जी स्नान करके बैठे थे, लेटे थे, अचानक दुर्गादास एक बहुत बड़ा ज्योतिषी था, उसने साहेब श्री गुरु अमरदास जी महाराज के चरणों का दर्शन किया। जब चरणों का दर्शन किया, देखते ही क्या देखता है दुर्गादास कि इनके चरण में तो कुछ और ही चीज है। ये तो समा पा करके दीन दुनी के मालिक बनेंगे, ये तो परमात्मा के रूप, इनका लोक परलोक के मालिक बनेंगे ये। वहां पर दुर्गादास आ करके गुरु अमरदास जी को ये बताते हैं, महाराज यदि आप हुक्म करें तो आपको कुछ मैं बताऊं, मैं ज्योतिषी हूं, क्या बताना चाहते हैं? मैंने आपके चरणों की रेखा को देखा है, एक समय आएगा कि जगत के मालिक नहीं, लोक परलोक के मालिक आप बनेंगे। गुरु अमरदास जी हैरान होते हैं, ये कैसे हो सकता है? महाराज अवश्य होंगे, आज तक हमारी जो पढ़ाई है वो बेकार नहीं गई है। गुरु अमरदास जी महाराज दूसरे दिन जाने लगे तो कुछ बख्शिश के रूप में 5 रुपया 10 रुपया जो भी हो देने लगे। देखो पंडित कितना चलाक है। दुर्गादास कहता है, महाराज हम अभी नहीं लेंगे इस पैसे, लेंगे लेकिन जिस वक्त आप शिखर पर होंगे, जिस वक्त आप दिन दुनी के मालिक होंगे, तो उस वक्त आऊंगा आपके पास लेने के लिए, और उस वक्त हम अपने हिसाब से मांगेंगे, और वो आपकी जो हैसियत दिन दुनी का मालिक होने के नाते आपसे हम मांगेंगे जो मांगना हो। बार बार करें, तुम ले लो, उस वक्त भी देखते नहीं महाराज, चरणों में गिर पड़ा और साहेब श्री गुरु अमरदास जी महाराज आए और साध संगत जी आपको पता ही है कैसे कैसे बीच में सन्यासी ने पूछा कि तुम्हारा गुरु कौन है। गुरु अमरदास जी महाराज कहते हैं गुरु गुरु क्या होता है, गुरु की महिमा को उन्होंने सुने ही नहीं थे। और जब वो पंडित ये कहता है सन्यासी कि ओहे तो मैं तो निगुरा का संग किया है, निगुरा का संग करना तो बहुत बड़ा पाप होता है, हम गंगा जी स्नान करेंगे पाठ करेंगे तो पवित्र होंगे। साध संगत जी वहाँ पर साहेब श्री गुरु अमरदास जी महाराज को एक तीर जैसा अंदर लगा और गुरु की खोज वहाँ से चल पड़ा। मैं सिर्फ वो चीज़ बताना चाहता हूँ कि जब साहेब श्री गुरु अमरदास जी महाराज साहेब श्री गुरु अंगद देव जी महाराज के चरणों में आकर के सेवा करके गुरु महाराज से खुशियां प्राप्त करके जब वो चवर तखत के मालिक बने, नितानियां के तान नियोटियां दी ओट नि आश्रया दी आश्रय निगतियां दी गत निपतियां दी पत निमानियां दी मान, इतनी ऊंची अवस्था को जब प्राप्त कर लिए और सारे संगत को उपदेश कर रहे हैं लोक परलोक के मालिक जब बन गए तो वो दुर्गादास पंडित आता है गोविंदवाल साहब देखो, और कितने समय के बाद आया उसको समय का भी पता था कि इतने समय के बाद उस स्थिति में आए। सात संगत जी उस साहेब श्री गुरु अमरदास जी महाराज के चरणों में नमस्कार करता है, गुरु महाराज बहुत प्रसन्न हुए देखकर क्योंकि उसका वचन सत्य हुआ था। हाँ दुर्गादास बताओ तुम्हें क्या चाहिए, जो कहेगा तुमको दे दूंगा, आज तुम पर प्रसन्न हूं। वो विचारता है मन में कि यदि गुरु महाराज से धन मांग लिया तो हजारों धनवान हैं और सांप बन करके मर जाते हैं और मरने के बाद उस धन की सांप बन करके रक्षा करते हैं, धनवान बनने का कोई फायदा नहीं। क्यों ना हो हम मुक्ति मांग लें। तो कहते मुक्ति को भी सुखम मुक्ति भी क्या करना है, सारी जिंदगी पैसे के लिए तंग रहूं और बाद में मरने के बाद मुक्ति हो, उस भी मुक्ति को क्या करना है, विचार कर रहा है। भाई संतोष सिंह जी हमें ये बता रहे हैं उनके बारे में, जे नाम देह धन देह न जन को, धन बिना जग न सुहाई, जे धन देवे नाम न देवे, नाम बिना जन जमपुर जाही, तुझ पे कही नहीं बन आवे, ज्यों भावे त्यों बनत बनाए। सचे पातशाह मैं धन मांगता हूं तो मुक्ति नहीं मिलती, मुक्ति मांगता हूं तो धन नहीं मिलता है, आप ऐसा करो आपको जो अच्छा लगता है वो मुझको दे दो। ज्यों भावे त्यों बनत बनाए, गुरु अमरदास ते जो के नंदन दोनों निर्मल पंथ चलाए। गुरु महाराज कहते हैं जाओ तुमको दीन और दुनी दोनों दे दिया, ये गुरु ही दे सकते हैं। साहेब श्री गुरु अमरदास जी महाराज जो दया के मूर्ति प्रसन्न हुए, कहते हैं दुर्गादास जाओ तू संसार वल्लों भी राजा रहेगा और परमात्मा वल्लों भी तुम्हारी परम गति हो। इसीलिए हथ कलम अगम मस्तक लिखावती, उरज रहियो सब संग अनूप रूपावती। गुरु और परमात्मा इसकी महिमा को कोई बता नहीं सकता है। उस्तत कहन ना जाए मुखो तुहारिया, हे वाहिगुरु हे सच्चे पातशाह एक मुख क्या, हजारों मुख से तुम्हारी उस्तति को हम कर नहीं सकते क्योंकि तू बेअंत है। मोही देख दरस नानक बलहारिया, हे नारायण, हे सच्चे पातशाह, मैं आपके चरणों में बलहार जाता हूँ, कुर्बान जाता हूँ। पौड़ी, हे अच्युत, हे पार ब्रह्म, अविनाशी अघनाश। सात संग जी, याद रखना, ये जो आज की पौड़ी है, ये निरोल वाहिगुरु के चरणों में आराधना है, प्रार्थना है, अरदास है। और जिस भावना को मन में रख करके इस पौड़ी को लोग पढ़ते हैं, उसकी भावना पूरा होता है। ये कोई निर्मले संत थे, आज से 35-40 साल पहले की बात सुना रहा हूँ, ब्रह्मज्ञानी महापुरुष, वो मुझे बताते थे कि ये उस्तत है वाहिगुरु की ये पूरी पौड़ी। हे अच्युत, हे पार ब्रह्म, अविनाशी अघनाश। हे अच्युत, अच्युत का मतलब होता है जो च्युत ना हो, अडिग। इस संसार में कहीं ना कहीं जाके व्यक्ति गिर जाता है, कोई पैसे से गिर जाता है, कोई चरित्र में गिर जाता है, कोई विद्या से गिर जाता, किसी ना किसी बातों में, कोई सेहत वालों गिर जाता है। लेकिन जो वाहिगुरु परमात्मा है वो अच्युत है, वो कभी डिगता ही नहीं। हे अच्युत, हे पार ब्रह्म, पार ब्रह्म उसको कहते हैं जो परे से परे है, परे से परे, जिसका कोई और छोर नहीं है। द बिगनिंग एंड द एंड, नो बिगनिंग नो एंड, एकदम बियॉन्ड जो है, ऐसा जो वाहिगुरु है पार ब्रह्म और अविनाशी है। अविनाशी का भाव है जिसका कभी नाश नहीं होता, तीनों लोकों के नाश होने पर भी उसका नाश नहीं होता जिसने इसको बनाया है। और अघनाश, अघ कहते हैं पाप को, भक्तों के पापों को वो नाश कर देता है, भक्तों के ऊपर प्रसन्न होकर के कृपा करके उसके पापों को नाश करके अपने चरणों के साथ वाहिगुरु जोड़ता है। ऐसा है नारायण, ऐसा है सच्चा पातशाह। हे अच्युत, हे पार ब्रह्म, अविनाशी अघनाश, हे पूरन, हे सर्वमय, दुख भंजन गुणतास। हे पूरन, ओ वाहिगुरु पूर्ण है, एक परमात्मा ही पूरन है और सब अधूरा है। एक मंत्र आता है, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओ वाहिगुरु पूर्ण है और उसकी बनाई हुई सृष्टि ये भी पूर्ण है। पूर्ण से पूर्ण निकाल दो फिर भी पूर्ण रहता है, उसमें डाल दो तो भी पूर्ण रहता है, उसकी पूर्णता में कभी कमी नहीं आती। ओ परमात्मा टोटल है, टोटलिटी, द टोटल, उसमें ना घाट है ना बाढ़ है ना घाट बाद होते है। ऐसा जो वाहिगुरु परमात्मा है वो परिपूर्ण है। हे पूरन, हे सर्वमय, हे वो जो परमात्मा है सर्वमय, कीड़ी में वो कीड़ी वर्गा है और हाथी में वो हाथी वर्ग है, सब इतना फ्लेक्सिबल है परमात्मा के सब में जो है समान रूप से व्यापक है। हे पूरन, हे सर्व में, दुख भंजन गुणतास। और दुख भंजन है जब भक्तों के ऊपर प्रसन्न होते हैं सो सारे दुखों को नाश कर देते हैं। जीवन में कोई भी दुख हो तो इस पौड़ी को पढ़ना, कोई बिजनेस में घाटा होवे, चाहे कोई रोग लग जाए, कोई तकलीफ होवे, क्योंकि परमात्मा ने हमें ये बताया है कि सगल द्वार के छाड़ के गहियो तुहारो द्वार, सारे को द्वार को छोड़ करके एक गुरु का द्वार पकड़ो, वाहिगुरु का। हे पूरन, हे सर्वमय, दुख भंजन गुणतास। और गुणादा जो है सो शिखर है परमात्मा। हे संगी, हे निरंकार, हे निर्गुण सब टेक। हे संगी, सत्संग जी, इस संसार में जिसको जिसको तुम संगी बनाए हो ना, सब मतलब के संगी है, कोई संगी नहीं, समझा। स्वार्थ लाग करह सब प्रीति। आम आदमी ने सुर देवता लोग, सुर नर मुन जन की यह रीति, देवता लोग बड़े बड़े तपस्वी, वो भी मतलब के लिए, हमारे आपकी तो किस खेत की मूली। यहाँ गुरु महाराज कह रहे हैं, हे संगी, हे निरंकार, हे निर्गुण। संगी तो वास्तविक में वाहिगुरु है, जो कदम कदम पर तुम्हारी रक्षा करता है, हे संगी। और जो उसको संगी बना लेता है, उसको और किसी की संगी बनाने की जरूरत नहीं है। और जिसने वाहिगुरु को संगी नहीं बनाया, सारे जगत को संगी बना लिया, कोई फायदा नहीं। इसलिए सगल द्वार को छाड़ के गहे तुम्हारो द्वार। हे संगी, हे निरंकार, हे आकार से रहित, हे निर्गुण, आप तीनों गुणों से रहित हैं, सब ठीक। और हे वाहिगुरु, सबका आसरा तू ही है। तिस साहिब के टेक, नानक मन माहे, जिस सिमरत सुख होए सगले दुख जाए। हे गोविंद, हे गुण निधान, हे गोविंद, हे गुणों के खजाने, जाके सदा विवेक, हे अपरंपर हर हरे, है भी होवन हार। हे अपरंपर, पारावार से रहित परमात्मा है, पहले भी था, अभी भी है, आगे भी रहेगा। आद सच, जुगाद सच, है भी सच, नानक होसी भी सच। हे संतह कै सदा संग, निधारा आधार। इस संतों का बहुत संग रहता है, इसलिए संतों से प्रीति करो। वो संतों के संग रहता है परमात्मा। हे संतह कै सदा संग, निधारा आधार। जिसको कोई आधार नहीं देता, उसको परमात्मा आधार देता है। हे ठाकुर हों दासरो, मैं निर्गुण गुण नहीं कोई। हे वाहेगुरु, हे नारायण, हे सच्चे पातशाह, मेरे अंदर कोई गुण नहीं है, मैं आपका दास हूँ। नानक दीजय नामदान, राखो हिये परोए। हे वाहेगुरु, हमारे हृदय के अंदर आप समा जाओ, और समा करके हमारे अवगुणों को ना देखो। आप हमारे हृदय में बैठ जाओ, और जो सिख, जो गुरुसिख गुरु के चरणों में बैठ के ये प्रार्थना करता है, अरदास करता है, वाहिगुरु नानक दीजय नामदान, राखो हिये परोए, हमारे हृदय में आकर के समा जाओ, तो सच्चे पातशाह आके समा जाते हैं, जिससे लोक सुखे परलोक सुहेले। नानक हर प्रभु आपे मेले। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी।